ओम शांति। भाग्य बांटने वाले, भाग्य विधाता, भगवान की स्वयं सदा स्मृति में रहने वाले ऐसे आदरणीय भ्राता सूर्य भाई जी, हम सभी के बीच में इस इंद्र की सभा में, ईश्वरीय सभा में उपस्थित है दरबार के अंदर। तो आपका इस सभा के अंदर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। आपने इस ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में मुजफ्फरपुर में रहते हुए 1965 में इस ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन के अंदर प्राप्त किया हुआ है। आपका ये परम सौभाग्य रहा है। संस्था के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जिनकी साकार में आपने स्वयं ने पालना ली हुई है, जिसका अनुभव आप अनेक आत्माओं को देकर के उसको लाभान्वित करते रहते हैं। साथ ही साथ में आप ज्ञान के गहन चिंतक और अध्ययक हैं, और आपने अपनी जीवन इस ईश्वरीय सेवा में मधुबन तपोभूमि के अंदर 45 ईयर से ईश्वरीय सेवा में समर्पित की हुई है। आपकी ये विशेषता रही है कि ज्ञान का इतना चिंतन है, जिसके आधार से शुरू शुरू में आपने 18 घंटा तपस्या की हुई है। ये भी आपका अनुभव है, जिसके फल स्वरूप अनेक सेवा केंद्रों पर योग तपस्या भट्टी का निमंत्रण मिलता है। तो आप वहां जाकर के अनेक आत्माओं को ज्ञान और योग से शक्ति भरते रहते हैं, और ऐसे बाबा के अमूल्य रतन विदेश यात्रा करके भी आपने अनेक आत्माओं को ईश्वरीय संदेश पहुंचाया हुआ है। आप जब से मधुबन में रहे हैं, तब से ही लेकर के बाबा का जो संकल्प था साकार में, कि मुझे कोई ऐसा बच्चा मिले, योगी बच्चा, जो बाबा की याद में भोजन बनाए ताकि खाने वालों को भी बाबा की याद आए, तो वो बाबा का संकल्प आपने कैच किया। और तब से ही लेकर के मधुबन बेहद बाबा के भंडारे की जिम्मेदारी आप स्वयं संभालते हैं। तो ऐसे बाबा के अमूल्य रतन आदरणीय भ्राता सूर्य भाई के स्वमुख से हम ज्ञान रतन से झोली भरेंगे। अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी की विधि और उसकी अनुभूति इस पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय राजयोगी भ्राता सूर्य भाई।
ओम शांति, ओम शांति। पहली बार जो बाबा से मिलने आए हैं, प्लीज हाथ उठाएं। पहली बार, ठीक है। ये परमात्म मिलन का सुख जो संगम युग पर हम सभी को, भाग्यवान आत्माओं को, पुण्य आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, आज फिर से उस परम सुख से हम सभी अपनी झोलियां भरेंगे। सभी को अब से अपनी स्थिति को महान बनाकर ईश्वरीय वरदान और शक्तियों की अनुभूति के लिए स्वयं को तैयार करना है। हमारा लक्ष्य, आप सबका भी लक्ष्य सब यही रहे कि अब से और बाबा जब तक आए और जब तक रहेंगे, हम अपनी अलौकिक स्थिति में, एक बहुत सुंदर स्थिति में, इसका अर्थ है मन बुद्धि को एकाग्र रखते हुए श्रेष्ठ विचारों में रहेंगे, ताकि बाबा के मिलन का संपूर्ण रस, संपूर्ण सुख हमारे अंदर समा जाए। सबको अनुभव है और होना चाहिए कि जब मन ईश्वरीय सुख से भर जाता है, जब मन में आनंद की लहरें उठने लगती हैं, तो मन बहुत तेजी से शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। और ये एकाग्रता हमारे अनुभवों के लिए सबसे सुंदर विधि है। तो सभी अपने दिल में, अपने मन में संकल्प कर लें, दृढ़ता पूर्वक, इच्छा पूर्वक, कि अब हमें स्वयं को श्रेष्ठ योग युक्त स्थिति में स्थित करना है। हमारी स्थिति का लेवल जितना ऊंचा उठेगा, उतना ही बाबा के सुंदरतम अनुभव होंगे। तो हम बीच बीच में कुछ अभ्यास भी करेंगे, लेकिन मैं एक बात से प्रारंभ करना चाहूंगा। संगम युग पर बाबा हमें सब कुछ देने आया है, और हमारा मन यदि परमात्म प्रेम से भरपूर रहता है, परमात्म प्रेम में संपन्न, तो हमें इस ईश्वरीय मिलन का, बाबा से मिलने वाले खजानों का बहुत सुंदर अनुभव प्राप्त होता है। हम अपने मन को बाबा के प्यार से भरपूर करें, इसके लिए जो सबसे पहली विधि है वो हमारे यहाँ के संसार में, परिवार में, संबंधों में हमारा जितना प्यार होता है, निस्वार्थ प्यार, आत्मिक प्यार, निष्काम भावना से भरा हुआ प्यार, ये प्यार हमारे चित्त को एक सुखद फीलिंग में रखता है। सबको अनुभव है, मन में यदि प्यार के अलावा नफरत भरी हो, प्यार के अलावा यदि क्रोध भरा हो, तो मन बाबा की तरफ आकर्षित भी नहीं होता है। तो हम सभी सबसे पहले अपने को ट्रेनिंग दें कि संगम युग के अब रहे हुए थोड़े समय में हमें अपने मन को, चित्त को, दिल को आत्माओं के लिए और बाबा के लिए सच्चे प्यार से भरपूर करना है। किसी भी कारण से हमारे मन में घृणा भाव या बदले का भाव आ गया हो, ज्ञान युक्त होकर उसे समाप्त करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज होगी हम सब के लिए, अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि हमारा जीवन इन चीजों में ही बीत जाए। बहुत बड़े भाग्य से, बहुत बड़े पुण्यों के बाद, बहुत सच्चे दिल की भक्ति करने के बाद हम सबको ये स्वर्णिम अवसर मिला है परमात्म मिलन का। ये दो चार घंटे का मिलन नहीं, ये निरंतर का मिलन है। हमारा जीवन ही उसकी छत्र छाया में बीतने लगा है, तो हम इसे सुखद बनाएंगे। ये सब हमारे अपने हाथ में है। आज की चर्चाओं में हम विशेष अभ्यास करेंगे। पिछली बार बाबा ने हमें पांच स्वरूपों के अभ्यास के लिए कहा, और मैं जहां तक देख रहा हूं अपने संगठन में बहुत भाई बहने जैसा बाबा ने कहा हर घंटे करो, उसी तत्परता से ये अभ्यास करते आए हैं पिछले 14-15 दिनों से। तो पांचों स्वरूपों का अभ्यास हम पांच बार में करेंगे। तो चलें सबसे पहले अनादि स्वरूप में, सभी अपने स्वरूप को स्पष्ट तीसरे नेत्र से देखेंगे भी और संकल्प भी करेंगे। मैं चमकती हुई ज्योति इस तन में अवतरित हुई हूं, मैंने अवतार लिया है इस संसार को बदलने के लिए। शिव के साथ मैं उसकी शक्ति इस धरा पर आई हूँ उसके कार्यों में सहयोग करने के लिए। मैं आकर बैठ गई अपने अकाल तख्त पर। मैं तेजस्वी आत्मा अकाल तख्त पर विराजमान। मैं इस देह से न्यारी हूँ। इस देह की मालिक हूँ। कर्मेंद्रियों की भी मालिक हूँ। संकल्प करें कुछ क्षणों के लिए मेरा शरीर लोप हो गया, बच गई मैं निराकार चमकती हुई आत्मा जिससे चारों ओर शक्तियों की किरणें फैल रही हैं, केवल निराकार आत्मा। बाबा बहुत जोर देते हैं पांच स्वरूपों पर। हमें याद रहे जिस स्वरूप का हम अभ्यास करेंगे उसके गुण संस्कार लक्षण शक्तियां सब हमारे वर्तमान जीवन में आती रहेंगी। संस्कार बदलने की बात हो चाहे स्वयं के अंदर से भय निकालने की, अपनी प्योरिटी को बढ़ाने का विषय हो या और बहुत सारे दैवी गुण अपने जीवन में समाने हो, सभी के लिए पांच स्वरूपों का अभ्यास सर्वोत्तम विधि है। जिसके लिए योग कठिन है, जिनकी मन बुद्धि स्थिर नहीं होती, योग उनके लिए भी बहुत सहज हो जाएगा। बाबा ने भी कहा था मन मनाभव की स्थिति से बहुत सरल हो जाती है। तो ये पांच स्वरूपों के अभ्यास हमारी एकाग्रता को बढ़ाने वाले हैं और जिन्होंने ये रोज अभ्यास किए हैं इन दिनों में, चलो फिर से अब हम ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे बैठेंगे।
योगी जीवन सचारा, योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन सचारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज। आत्मा सुन लो मेरी आवाज, तो यही ज्ञान का सार।
योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा।
मैं पूछना चाहूंगा, पिछले 15 दिनों में किन्होंने पांच स्वरूपों का अभ्यास बहुत अच्छी तरह किया है? अच्छा, जिन्होंने किया है आप सब जानते हैं, बाबा की आज्ञा पालन करने से साथ साथ उसका प्यार और वरदान मिलता है। जिन्होंने नहीं किया वो ध्यान दे फिर से, ये सब हमारे लिए बहुत कल्याणकारी हैं। हमारा योगी जीवन है, हमें इस जीवन को संपूर्ण रूप से सफल करना है और ये पांचों अभ्यास बहुत सरल हैं, बहुत सरल। बाबा ने भी एक बात कही थी, क्योंकि ये हमारे स्वरूप हैं, अपने स्वरूप को याद करना कठिन नहीं होता है, केवल दृढ़ इच्छा की जरूरत है और कोई कठिनाई इसमें नहीं है। तो मैं आपको एक बात याद दिला रहा था, अगर हम पांचों स्वरूपों का अभ्यास सारा दिन बहुत अच्छा करें तो शाम को आते आते इस समय हमारा चित्त पूरी तरह शांत हो जाता है। शांति के अलावा जो सबसे सुंदर स्थिति है, मन परमानंद में आ जाता है। इन सब के अनुभवों को हमें बढ़ाना है। पांचों स्वरूपों के अभ्यास में हमारा इंटरेस्ट सदा बना रहे, क्योंकि बहुतों के साथ ये होता है, दो तीन दिन करने के बाद मन बोर हो जाता है और सोचते हैं छूटने लगता है, अब इसमें कुछ रस नहीं रहा है। इसलिए हर स्वरूप के बारे में पांच पांच तरह की कमेंट्री लिखें सभी अपने पास। एक एक कमेंट्री में चाहे तीन चार लाइन हो, बस इससे ज्यादा नहीं। रोज नए नए ढंग से करने से अभ्यास में रस बना रहेगा। आत्मा की अभ्यास के बारे में एक अभ्यास ये जो हमने किया, दूसरा ये कि मैं आत्मा भृकुटि सिंहासन पर विराजमान हूं, मैं राजा हूं, मुझसे निकली हुई किरणें मेरे सारे शरीर में प्रवाहित हो रही हैं, इससे कर्मेंद्रियां शीतल हो रही हैं, ये दूसरी कमेंट्री हो जाएगी। ऐसे ही पांच पांच हरेक स्वरूप की सब लिखें, सबके पास ज्ञान संपूर्ण है और हमारे पास एक एक स्वरूप के बहुत बहुत सारे विचार सहज रूप से हैं। हम केवल जब उनका अभ्यास करेंगे तो वो हमारे अंदर से ही इमर्ज होने लगेंगे। हमें प्यार बढ़ाना है आपस में बहुत। आज हम बाबा से मिलते हुए ध्यान दें जरा, बाबा जब हमें दृष्टि दे तो हमने अपने मन में दूसरों के लिए जो भी उल्टा भाव रख लिया हो, जो हमारे आत्मिक स्नेह को नष्ट करता हो, उसको सच्चे दिल से छोड़ देंगे, जैसे बाबा पर समर्पित कर देंगे अपने उस निगेटिव भाव को। और सभी आत्माएं देव कुल की महान आत्माएं हैं, सभी हमारे अपने हैं, हम सब एक ही घर के एक ही परिवार के हैं। गुण अवगुण दोष छोटी छोटी बातें गलतियां किसी से भी होती हैं, उसके कारण हम अपने चित्त को कड़वाहट से न भरें। तो चले अब हम दूसरा अभ्यास करते हैं। पहले जन्म में चलेंगे सभी, जय श्री ब्रह्मा बाबा। बहुत गुड फीलिंग और नशे में रहते थे, मैं ये शरीर छोड़कर जाकर श्री कृष्ण बनूंगा। हम भी इस फीलिंग में आ जाएं, मैं ये देह छोड़कर जाकर देव कुल की महान आत्मा बनूंगा। चले पहले जन्म में, अपने चारों ओर स्वर्ग लोक देखें, देव नगरी, चमकते हुए सोने के महल, चारों ओर परमानंद, प्रकृति का संपूर्ण सौंदर्य, देव लोक का सुंदर नजारा, घरों के सामने पुष्पक विमान खड़े हैं, अब अपने को देखें, मैं देव स्वरूप में हूं। दिव्य चेहरा, सिर पर डबल ताज, यहां मैं सर्व गुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हूं। संपूर्ण लोक का मालिक, प्रकृति का मालिक हूं। ऐसे देव स्वरूप के जन्म देवलोक में 2500 वर्ष तक मैंने व्यतीत किए। वो संपूर्ण देवत्व मेरे अंदर विराजमान है। मैं देव कुल की महान रॉयल आत्मा हूं। ओम शांति। देव स्वरूप के अभ्यास से हमारे अंदर समाया हुआ देवत्व इस जीवन में प्रकट होने लगेगा। संस्कारों में स्वतः ही रॉयल्टी आ जाएगी, प्योरिटी बहुत बढ़ जाएगी, दिव्यता आने लगेगी। जो बाबा चाहते हैं कि बाप की प्रत्यक्षता तुम्हारे चेहरे और चलन से होगी, चेहरों पर दिव्यता स्वतः ही झलकेगी और इस संसार के सभी लोग महसूस करने लगेंगे कि ये हमसे अलग हैं, इनका जीवन अलौकिक है और ये भिन्नता, ये सात्विकता, दिव्यता सबको बाबा की ओर आकर्षित करेगी। हम अपने जीवन को प्रेम से भरें, खुशियों से भरें। रोज बाबा हमें खुशी में रहने की ट्रेनिंग देते हैं। कितनी अच्छी बात थी, 2 दिन पहले बाबा के शब्द ही कितने प्यारे हैं, अतिंद्रिय सुख पूछना हो तो मेरे बच्चों से पूछो। भगवान को भी गर्व है, नाच है कि मेरे बच्चे कितने गहन, उत्तम, सर्वोत्तम, अतिंद्रिय सुख में रहते हैं। अतिंद्रिय सुख पूछना हो तो उनसे पूछो जिन्हें रोज भगवान पढ़ाते हैं। अतिंद्रिय सुख पूछना हो तो उनसे पूछो जिन्हें परमात्म प्राप्ति हुई है। हम अपने मन को खुशियों से भरेंगे और इसके लिए मैं आपके सामने केवल तीन बातें सार में रखना चाहता हूं। नो कंपेरिजन, दूसरों से तुलना नहीं। जब हम दूसरों को देखकर उनसे अपनी तुलना करने लगते हैं तो कहीं निराशा आती है, कहीं उदासी, खुशी नष्ट हो जाती है। हमारे पास जो कुछ है वो सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे हमसे अपनी तुलना करें, हमें परमात्म प्राप्ति है, हमारे पास कितनी शक्तियां और वरदान हैं, यदि हम अपनी प्राप्तियों की लिस्ट बनाएं तो हमें बड़ा श्रेष्ठ स्वमान भी उत्पन्न होगा। और बाबा के लिए जिसने ये सब कुछ हमें दिया है उसके लिए बहुत प्यार भी पैदा होगा। हमें तपस्या करनी है। संगम युग पर जो आत्मा तपस्या न कर सके, ध्यान से सुन लेंगे सभी, संगम युग पर जो तपस्या न कर सके उसका जीवन तो समस्याओं से गुजरता ही है। तपस्या ही समस्याओं को समाप्त करती है। जहां श्रेष्ठ तपस्या है वहां सेवाओं की वृद्धि भी सहज और सेवाएं भी निर्विघ्न हैं। बाबा हमेशा कहते रहते हैं सेवा निर्विघ्न बनाकर दिखाओ। ये काम तपस्या से होगा। हम अपने को तपस्या के लिए तैयार करें और तपस्या वही कर सकते हैं। एक ही बात देखने में आती है, सभी अपने को भी देख सकते हैं। यदि हम तपस्या नहीं कर पाते तो उसका एक ही कारण है, व्यर्थ में रुचि। चाहे व्यर्थ बातें हों, चाहे व्यर्थ चिंतन हो, चाहे व्यर्थ सुनना हो, व्यर्थ में रुचि तपस्या की रुचि को नष्ट कर देती है। हमें खुश रहना है तो दूसरी धारणा हम अपनाएंगे, नो एक्सपेक्टेशंस, कामनाएं नहीं। कामनाएं, मनुष्यों से कामनाएं, सांसारिक इच्छाओं की प्राप्ति की कामना, ये सब हमारी खुशी को तेजी से नष्ट कर देती हैं। और इसी तरह तीसरी बहुत अच्छी धारणा, दूसरों पर दृष्टि जब हम डालते हैं तो यदि अवगुणों पर दृष्टि जाती है तो खुशी तुरंत नष्ट हो जाती है। सब सूक्ष्मता से अपने को देख लें और अनुभव करें। गुणग्राही बनकर रहते हैं तो हमें सब अच्छे लगते हैं, प्यार का वातावरण बनता है, खुशी नेचुरल होने लगती है। इन तीन धारणाओं को हम अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह बढ़ाएंगे। अब फिर से चले हम पूज्य स्वरूप की ओर। सभी बहने माताएं अष्टभुजाधारी दुर्गा बन जाएं और महसूस करें मैं मंदिर में मूर्ति के स्थान पर हूं। सभी भाई विघ्न विनाशक गणेश बन जाएं, एक ही स्वरूप में बैठेंगे बस। चलो अपने को महसूस करें, मैं अपने इस पूज्य स्वरूप में मंदिर में मूर्ति की जगह स्थित हूं। द्वापर युग से अनेक भक्त मेरे इस पूज्य स्वरूप से अनेक प्राप्तियां करते आए हैं। संगम युग पर मैंने परमात्म कार्यों में सहयोग दिया, उसका इनाम दिया उसने हमें पूज्य बनाकर। अपने को पूज्य स्वरूप में देखें, सामने खड़े हुए भक्त हमारा गुणगान कर रहे हैं। हे देवी, हे देव, आप असुर संहारिणी हो, विघ्न विनाशक हो, विद्यादायिनी हो, भाग्य विधाता हो, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो, सिद्धि दाता हो, कष्ट निवारक हो, बिगड़ी को बनाने वाले हो, दाता विधाता और वरदाता हो, भिन्न भिन्न कामनाओं के साथ भक्त हमारे द्वार पर आए हैं। अब हमें सभी को शक्तियां देकर उनकी कामनाएं पूर्ण करनी है। संकल्प करें, मैं सभी ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, भ्रकुटी सिंहासन पर हूँ, मुझसे शक्तियों की किरणें निकलकर सभी भक्तों पर पड़ रही हैं। सभी भक्त संतुष्ट होकर जय जयकार कर रहे हैं। ओम शांति। बाबा जब अव्यक्त हुए तो कहा करते थे, बच्चे मंदिरों में जाओ और सुनो, भक्त तुम्हारी क्या महिमा गा रहे हैं। तुम अपनी महिमा भूल गए हो, भक्तों को वो सब याद हैं। वो हमें याद दिलाते हैं, वो हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम्हारे दर्शन से, तुम्हारी माला फेरने से ही हमारे सब विघ्न नष्ट हो जाते हैं। तुम कितने महान हो। अगर हम इस स्मृति में रहेंगे तो हमारे विघ्न तो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। हमें अपने जीवन को प्यार से भरने के लिए दो धारणाओं पर और ध्यान देना है। परिवारों में, संगठनों में एक दूसरे के सहयोगी और सच्चे मित्र बन जाएं। याद रखेंगे, जो आपस में एक दूसरे के मित्र नहीं, वो भगवान को अपने मन का मित्र नहीं बना सकते। बाबा उनसे ही प्यार करता है जो एक दूसरे को बहुत स्नेह और सहयोग देते हैं। मुझे याद है, बहुत साल पहले कभी बाबा ने कहा, बाबा जब परिवार से प्यार की बात कह रहे थे, सदा ही कहते हैं, तो बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते हैं कि बाबा आपसे हमें बहुत बहुत प्यार है, अगर छाती फाड़ के दिखाएं तो आप ही आप दिखाई दोगे, लेकिन परिवार हमें अच्छा नहीं लगता। तो बाबा का बहुत सुंदर उत्तर था। समझने योग्य रहस्ययुक्त ये बात है। बाबा ने कहा, ऐसे प्यार को बाप स्वीकार नहीं करते। हम सभी एक दूसरे के लिए सहयोग और सम्मान की भावना बढ़ाएं। बाबा कहा करते थे, जब तुम मंदिरों में पूजे जाते हो तो तुम ही एक दूसरे को बड़ा सम्मान देते हो, पत्थर की मूर्ति देखते हो तो हाथ जोड़ के नमन करते हो, और जब तुम आपस में चेतन में आ गए हो तो एक दूसरे से घृणा क्यों करते हो। पत्थर की मूर्तियों को बहुत प्यार और चेतन मूर्तियों को प्यार नहीं। हम अपने से बातें करें। आज बाबा हमारे बीच में आ रहे हैं, हम अपने मन के विष को पूरी तरह अर्पित कर दें। शिव बाबा तो सबका विष पीने वाले हैं। जो भी विष किसी के लिए हमने अपने चित्त में भर लिया हो उसको पूर्णतया समाप्त करेंगे। जब हम ब्राह्मण स्वरूप का अभ्यास करते हैं, कई सोचते हैं ब्राह्मण तो हम हैं ही, इसको क्या याद करें, पर हम याद करेंगे हमारा जीवन कितना सुंदर है जिसमें हमें भगवान का साथ मिला, परमात्म पालना मिली, संपूर्ण ज्ञान मिला। विचार करेंगे बाबा से क्या क्या मिला, हमारा जीवन धन्य धन्य हो गया। हमने जो स्वप्नों में भी नहीं सोचा था, जिसकी कल्पनाएं भी नहीं की थी, वो सब हमारे समक्ष प्रत्यक्ष है। अपने वर्तमान जीवन के महत्व को, प्राप्तियों को स्मृति में लाएंगे और फिर हम संगम युग के सभी स्वमानों को याद करेंगे। ये बहुत सुंदर विधि है कि हम 10-12 स्वमान अपने पास रख लें और एक एक को 10-10 सेकेंड याद करें, उसको फीलिंग में लाएं। अगर कोई 2 बार भी ऐसा कर ले सवेरे शाम तो बहुत सारे व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति होने लगेगी। चले अब हम अपने ब्राह्मण स्वरूप में याद करें स्वयं भगवान हमें कितना प्यार करता है। हमें अपनी छत्र छाया में छुपा कर रखता है, माया से सेफ करता है, न जाने संसार के कितने विघ्नों को दूर से ही नष्ट कर देता है। चले याद करें सभी स्वमानों को एक विशेष तरह से, सब महसूस करें बाप दादा वतन से नीचे उतर कर आ गए हैं, मेरे सम्मुख खड़े हैं। मुझे दृष्टि दे रहे हैं, और बाबा ने अपनी 1000 भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी हैं। बाबा ने याद दिलाया बच्चे तुम साधारण नहीं हो, इस संसार में महान आत्माएं हो। मैंने तुम्हें करोड़ों के बीच से चुनकर सुगंधित फूल बनाया है। तुम इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हो। कल्प कल्प के विजय रतन हो। माया तुमसे हर बार हारी है, तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम इस धरा पर जहान के नूर हो, पवित्रता के सूर्य हो। तुम्हारे प्रकाश से ही ये जग प्रकाशित हो रहा है। तुम इस संपूर्ण प्रकृति के मालिक हो। प्रकृति तुम्हारे पवित्र वाइब्रेशंस की वैसे ही इंतजार करती है जैसे प्यासा मनुष्य पानी का। तुम्हारी पवित्रता प्रकृति के लिए शक्ति है, वरदान है। तुम पूर्वज हो, तुम्हें सभी धर्मों की आत्माओं की पालना करनी है। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मेरी सारी शक्तियां तुम्हारे पास हैं। तुम परमात्म शक्तियों से संपन्न हो, संसार की विघ्न और समस्याएं तुम्हारे सामने बहुत कमजोर हैं। तुम साधारण नहीं, बहुत महान हो। ओम शांति। इस तरह हम अपने को जगाते हैं, हमें स्वयं को जगाना है। इससे हमारी सोई शक्तियां जगती हैं, हमारे अंदर के टैलेंट्स योग्यताएं जागृत होती हैं। हमें ये गुह्य रहस्य भी याद रखना है, 84 जन्मों में बहुत सारी योग्यताएं हमारे अंदर रही होंगी। कोई योग्यताएं 5 जन्म चली, कोई 10 जन्म चली, वो सभी बीज रूप में हमारे अंदर विद्यमान हैं। जब हम श्रेष्ठ स्वमान का अभ्यास करते हैं तो हमारी वो योग्यताएं जागृत हो जाती हैं। इसको बाबा कहते हैं आह्वान करना। बहुत सारी योग्यताएं हमारे पास हैं, चाहे वो गीत कविता लिखने की हो, लेख लिखने की हो, डांस करने की हो, ड्रामा लिखने की हो, कोई विशेष कला, जो संसार में गीत संगीत की बहुत सारी कलाएं हैं, 64 कलाओं का गायन है, विद्याओं का, उनमें से बहुत सारी हम में से हर एक के अंदर विद्यमान रहती हैं। जिस कला को हम चाहें इमर्ज कर सकते हैं। मान लो किसी को भाषण करना नहीं आता, पर भाषण करने की इच्छा बहुत है, उससे सेवा होगी, वो इस तरह भाषण करने की योग्यता को आह्वान कर सकते हैं। आज हमारे बीच में बाबा आएंगे, हम अपने भाग्य को याद करके आनंदित हो जाएं। बाबा ऊपर से नीचे उतरेगा, महाज्योति सर्वशक्तिवान शांति के सागर इस धरा पर आ जाएंगे, ज्ञान सूर्य इस धरती पर प्रकट होगा। सोचो, हम सब जानते हैं सूरज जो आसमान में चमकता है वो तो धरती पर नहीं आ सकता, परंतु ज्ञान सूर्य जब इस धरा पर उपस्थित होते हैं तो उनके वाइब्रेशंस इस सारे संसार में फैल जाते हैं, उसमें भी इस हॉल में बहुत ज्यादा, और जहां जहां बाबा के बच्चे सारे संसार में बैठकर उससे योग लगाते होंगे, उसकी वाणी पर फोकस किए होंगे, वहां वहां उसके वाइब्रेशंस अपना काम करते रहते हैं। तो कितना बड़ा भाग्य है हमारा, इन आंखों से उसे देखेंगे जिसे देखा नहीं जाता है, इन कानों से भगवान के महावाक्य सुनकर अपने मन के अंधकार को हम दूर करते आ रहे हैं, आज और अच्छी तरह सुनेंगे। तो पहले बाबा को भोग लगता है, गुलजार दादी आएंगी, भोग लगेगा, सभी ध्यान रखेंगे। जब दादी ध्यान में जाती है तो ताली नहीं, ताली बजाना स्थूलता है, और हम सब बैठते हैं बिल्कुल डीप साइलेंस में, बाबा का आह्वान करते हैं। उस समय हम सभी बहुत प्यार से बाबा से बातें करते रहेंगे और बाबा को बुलाएंगे बहुत प्यार से। याद रहे इस मिलन का आनंद इस बात पे निर्भर करेगा कि हरेक के मन में कितने सुंदर संकल्प हैं। सुंदर संकल्प आप बाबा को सामने देखकर सोचते रहें, संकल्प करते रहें, कौन सामने बैठा है, जिसकी एक दृष्टि पाने के लिए सारा संसार तड़पता है, वो हमें दृष्टि दे रहा है बहुत प्यार से। संकल्पों की सुंदरता से हम सुंदर अनुभव को प्राप्त होते हैं। तो जब भोग लगता रहे और जब तक बाबा आए, तब तक हम अच्छे विचारों से बाबा से बातें करेंगे, अपने श्रेष्ठ भाग्य को याद करते रहेंगे और बाबा का आह्वान करेंगे अच्छे अच्छे शब्दों में। जैसे हे प्राणेश्वर हम नैन बिछाए बहुत प्यार से आपका आह्वान कर रहे हैं, हम युगों से आपसे मिलना चाहते थे, अब हमसे मिलने के लिए जल्दी आ जाओ। बुलाते रहेंगे और फील करेंगे कि ऊपर से बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बहुत अच्छा एक विजन रखेंगे, ज्ञान सूर्य से बाबा सिर के ऊपर है, अभी से अपने सिर के ऊपर ले आए सभी। ज्ञान सूर्य से बाबा सिर के ऊपर है, उसकी किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही हैं। इस अभ्यास को आप बाबा के सामने बैठकर भी करते रहेंगे। बाबा जब आ जाते हैं तो सफेद लाइट होगी, बाबा हम सभी को दृष्टि देते हैं। बहुत अच्छी बात जानने के योग्य है, हम लालायित रहते हैं बाबा की दृष्टि लेने के लिए, बहुत उत्तम बात है, लेकिन किसी किसी पर बाबा की दृष्टि खींचकर चली जाती है। हम चाहे जहां भी बैठे हों, आप किसी भी कोने में हैं, दूर हैं, पीछे हैं, केवल टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप अपने मन को बिल्कुल शांत करके बैठेंगे, वहीं बाबा की लाइट, बाबा की एनर्जी, बाबा से फैलने वाली किरणें वहीं आपको प्राप्त होंगी। केवल आवश्यकता है अपनी बुद्धि के नेत्र को बाबा के स्वरूप पर स्थिर रखना। वो ज्ञान सूर्य जो ऊपर है अब हमारे सामने आकर बैठ जाएगा, अब उस पर फोकस करना, उससे शक्तियों की किरणें लेते रहना, ये काम आप सभी करते रहेंगे मुरली सुनते हुए भी। मुरली सुनने का रस लेंगे, मुरली तो कल मिलेगी भी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मुरली मिस हो जाए। मुरली में जो कुछ बाबा हमें याद दिलाते हैं, दो तरह का अभ्यास करते रहेंगे। एक ये कि सामने ज्ञान सूर्य बैठे अपनी शक्तियों की किरणें हमें दे रहे हैं, और दूसरा ये भगवान मुझसे बातें कर रहा है, भगवान बातें कर रहा है, इससे अपने चित्त को आनंदित करते रहेंगे। मुरली हमारे लिए वरदान है, दृष्टि बहुत सुंदर अनुभव कराती है, यदि हमारी दृष्टि और तीसरा नेत्र स्थिर रहे तो। जब बाबा दृष्टि देते हैं आप कोई भी संकल्प अपने मन में कर सकते हैं। दो तरह के संकल्प होंगे, कोई विशेष कमजोरी बाबा को अर्पित कर सकते हैं या कोई विशेष शक्ति या वरदान बाबा से लेने का संकल्प कर सकते हैं। ये काम उस समय संकल्प से ही होता है जब बाबा हमें दृष्टि दे रहे होते हैं। तो इस तरह हम बाबा की दृष्टि और मुरली का संपूर्ण आनंद लेंगे। बहुत एकाग्रचित होकर अपने मन को किसी भी संशय और निगेटिव विचारों से मुक्त रखते हुए उसके बाद सभी दादियां स्टेज पर आती हैं। मैं ये बात सभी को अंडरलाइन करके कहना चाहता हूं कि मुरली के बाद अपने चित्त को शांत रखेंगे और इस सुख का अनुभव करेंगे कि सामने भगवान बैठा है, उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। कुछ भी संकल्प करने से अच्छा होगा हम उससे शक्तियों की किरणें लेते रहें। कोई भी निगेटिव संकल्प, कोई भी संशय का संकल्प हमारे अनुभवों को नष्ट कर सकता है। इसलिए आज का हमारा समय, जब से बाबा आएंगे 3 घंटों के लिए, सोचें 3 घंटे हम भगवान के साथ बैठेंगे, उसको देखेंगे, उसको सुनेंगे, उसके वाइब्रेशंस का सुख प्राप्त करेंगे। बस हमें यही करना है, बाकी सब संकल्पों को अब से और 11 बजे तक के लिए हम विदाई दे देते हैं। यही सब अपने से संकल्प करें। अब हम 5वां और अंतिम अभ्यास करेंगे। इससे पहले मैं एक चीज कह देना चाहता हूं, बहुत सारे भाई बहनों को ये समझ में नहीं आता कि ये फरिश्ता क्या है, ये लाइट का शरीर क्या है। बहुत सहज भाषा में सभी समझ लें, टीचर बहने भी ध्यान से सुन लें, आपके स्टूडेंट्स आपसे पूछते हैं ये सूक्ष्म शरीर क्या होता है, ये कहां से आता है। स्थूल शरीर तो दिख रहा है, आत्मा जो कुछ सोचती है, हमारा मन जो सोच रहा है निरंतर, उसकी एनर्जी, उसके वाइब्रेशंस, उसका प्रकाश निरंतर हमारे शरीर में भी फैलता है। जैसे उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं, वैसे ही वो सारे शरीर में भी फैलते हैं। और ये वाइब्रेशंस सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। तो 2 शरीरों में आत्मा बैठी है, बिल्कुल ऐसा ही अंदर प्रकाश का शरीर, बाहर तत्वों का शरीर। थोड़ी देर के लिए आप उस सीन को इमर्ज करें जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो आत्मा सूक्ष्म शरीर को लेकर बाहर निकलती है। अकेली आत्मा नहीं, सूक्ष्म शरीर के साथ, बिल्कुल वैसा ही शरीर जैसा ये है। तो अब हम अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर में हूं, यही अंतिम अभ्यास है, गीत बजाएंगे। मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर में हूं, फरिश्ता संकल्प कर लें, ये शरीर ही जैसे प्रकाश के शरीर में बदल गया, या ये शरीर मेरा लोप हो गया और बच गई मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में, मैं डबल लाइट फरिश्ता, पवित्रता का फरिश्ता। ऊपर देखेंगे बाबा को, पवित्रता के सागर, और उनसे निकली हुई पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मानो ऊपर से पवित्र सफेद किरणों की बरसात हो रही है।